ओम शांति। प्रश्नों से पार। पहला प्रश्न है, कुछ आत्माओं को अनुभव होता है कि उन्हें बाप दादा सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। यह भावनाओं के कारण लगता है या बाबा सच में ऐसा अनुभव कराते हैं? वह ऐसा अनुभव कैसे करते हैं? उन तक तो हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और उसके रिटर्न में वाइब्रेशन वो शक्तियां मिलती है। बाबा के पास तो शरीर नहीं है, फिर यह सब कैसे होता है? तो प्रश्न पूछा है किसी ने कि कुछ आत्माओं को अनुभव होता है कि उन्हें बाप दादा सम्मुख दिखाई दे रहे, तो ये भावनाओं के कारण होता है या फिर बाबा सच में ऐसा अनुभव कराते हैं? वह ऐसा अनुभव कैसे करते हैं? क्या कहेंगे? कुछ आत्माओं को तो बाबा अनुभव कराते तो सबको क्यों नहीं कराते? श्रीमत पर तो बहुत सारे चलते हैं, क्या सबको दिखते हैं? ये कौन निर्णय करेगा कि किसको जरूरत है और किसको नहीं है? कुछ आत्माओं को अनुभव होता है कि उन्हें बाप दादा सम्मुख दिखाई देते हैं। यह भावनाओं के कारण लगता है या बाबा सच में ऐसा अनुभव कराते हैं? साक्षात्कार कौन कराता है? साक्षात्कार भगवान कराते हैं या अपने आप होते हैं? बाबा के ही महावाक्य है कि साक्षात्कार बाप नहीं कराते, अपने आप होते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज समझने की आवश्यकता है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। जो कुछ भी दिखाई देता है वो मन का ही प्रोजेक्शन है, वो कहीं से आ नहीं रहा है। जो राम का भक्त है उसे राम दिखाई देता है, जो राम का भक्त है उसे जीसस क्राइस्ट दिखाई नहीं देता है, जो कृष्ण का भक्त है उसे कृष्ण दिखाई देता है, जो जिसकी भक्ति करता है या जिसके प्रति जिसकी भावना है वही उसे सामने दिखाई देता है। उसमें भगवान कुछ नहीं करता है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मन ही का खेल है कि जो अनुभव हो रहा है कि इवन बाप दादा सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जो भावना है उसी अनुसार उसको दिखता है, जिसने सारे दिन भर जो कुछ किया है रात में वही उसको दिखता है। जैसे वो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाते हैं कि उनको काली माँ दिखती थी, तो ये काली माँ कौन है? कोई है? फिर कहां से दिखती थी माँ? माँ माँ क्या दिखाई देता था? उन्होंने खुद ही कहा हुआ है, जब वो तोतापुरी आते हैं सन्यासी उस गांव में दक्षिणेश्वर में, तोतापुरी जब आते हैं वो सन्यासी होता है अद्वैत वेदांतिन, तो वो उनको कहता है कि जब देखता है कि ये बहुत ही भोला भाला व्यक्ति है, जो भी कुछ कहो तो कहता है माँ से पूछूंगा, माँ माँ माँ, तो उसको लगता है कि इसको अनुभव कराना चाहिए समाधि का, तो उसको सामने बिठाते हैं और उसको वो कहते हैं कि सोचो कि मैं ब्रह्म हूँ, परंतु वो जैसे ही सोचने जाते हैं वो माँ काली दिखाई देती है। वो कैसे उसको दिखाई अनुभव करेगा उसका कि निराकार का, निराकार की साधना है, निर्गुण साधना, वो जो कर रहे हैं वो सगुण साधना है, जिसमें एक व्यक्ति है, एक माँ है जो उनको दिखाई दे रही है। तो वो उनको वही कहते हैं कि वो जो काली माँ है उसको तुम्हें तलवार से काटना होगा। वो कहता है तलवार कहां से आएगी? वो कहते हैं वहीं से आएगी जहां से काली आई है। फिर भी वो जब बैठते हैं तो उनको बार बार वही दृश्य दिखता है, तो वो एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और यहां निशान करते हैं उनके, और तब कहीं जाकर वो तलवार से उसको काट सकते हैं। वहां वो एक अंतिम चीज कहते हैं कि जो अंतिम बाधा थी, द लास्ट बैरियर इज रिमूव्ड, जो अंतिम बाधा थी वो आज हट गई, क्योंकि वो भी प्रक्षेपण था एक मन का। तो ये जो भी कुछ होता है वास्तव में, जो जिसकी प्रति जिसकी भावना होगी सुबह से लेकर रात तक, उसका ही चिंतन, उसका ही चिंतन, उसका ही चिंतन, उसका ही चिंतन, तो वही दिखेगा उसको। भगवान संपूर्ण, वो दूसरी बात है कि वो जो शुरुआत में उसने जो साक्षात्कार करा है वो अलग थे, परंतु ये जो भी कुछ होता है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति अति न देख ही तैसी, जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, ये भावनाओं के कारण होता है या बाबा सच में ऐसा अनुभव कराता है, उसकी वैसी ही भावना है। और ये दिखना, इसका योग से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। ये वैसे ही खेल पाल है, ये वैसे ही ध्यान है, वैसे ही ट्रांस है, वैसे ही साक्षात्कार होने जैसा है कि किसी को अमृत वेला बाबा दिख जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दिन भर में जो परिस्थिति आएगी वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसको बाबा ने सुबह सुबह कुछ खिला दिया, शुभी रस खिला दिया, या कुछ खिलाया, या कुछ भी किया, प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड है सब कुछ। इसमें बहुत ज्यादा कोई, कई सारे लोग फोन करते हैं या पूछते हैं इस तरह की बातें कि ऐसा वैसा दिखा तो क्या होना चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ करे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अनायास भी तभी होगा व्यक्ति को जब मन में उसकी भावनाएं जैसी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में वही बाहर निकलता है, स्वप्न के द्वारा या इस तरह के साक्षात्कार के द्वारा। अनायास होना वो बहुत 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 रेयर इवेंट है, और वो जो होगा उसमें मैक्सिमम अधिकतर व्यक्ति अपनी विचार को मिला देता है, वो प्योर अनएडल्ट्रेटेड नहीं रहता है। वो अगर होता है तो बहुत ही मतलब रेयर इवेंट है, और वो होगा तो वो वास्तविक होगा, सही होगा। पर 99.9% जो कुछ होता है प्रोजेक्शन से, सारे जो हुआ वो दैट इज ओके। अभी जो भी है वो सारे प्रोजेक्शन से, किसको दिखा, बाबा ने मुझे ये करा दिया, बाबा ने वो करा दिया, ये सब माइंड के खेल से खेल है सब, या उसकी भावना है जो निकल कर बाहर आ रही है परम्यूटेशंस अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, जो कुछ वो सोचता है। यहाँ आत्मा समझकर बाप को याद करो, ये पढ़ाई है, तुम्हें एक विचार सागर मंथन करना है। अगर ये इतना आसान होता कि किसी को बस बाबा दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी सूक्ष्म वतन दिख रहा है, कभी मधुबन दिख रहा है, कभी आगे क्या होने वाला है वो पता चल रहा है, सिक्स्थ सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, ये सब खेल है, इससे तपस्वी जीवन का कोई संबंध नहीं है। अगर ये होता है तो इसको रिजेक्ट लिस्ट में डाल देना है, ना तो इसके ऊपर सोचना है और ना ही उसको दूसरों को बताकर ये दिखाना है कि देखो हमको ये दिखा आज हमको, तुमको उससे हम ये कहना चाहते हैं कि तुमको नहीं दिखा है, मुझे दिखा है। उसका वर्णन करने से हम ये भी दर्शाना चाहते हैं कि मुझे हुआ है तुम्हें नहीं हुआ है, उससे हम ये भी बताना चाहते हैं कि मेरी पवित्रता थोड़ी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी थोड़ी कम अच्छी है, उससे हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे में जरूर कुछ ना कुछ अपवित्रता है, इसलिए तो तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है, नहीं तो शुद्ध अगर तुम्हारी भावना होती तो तुमको भी दिखता। यहां पर प्योर साइंस है, जो व्यक्ति दिन रात जिस चीज के बारे में सोचते रहता है उसको वो दिखेगा। जो जीसस क्राइस्ट के बारे में दिन रात सोचते रहता है उसे राम तो कभी दिखता नहीं, क्यों राम क्यों नहीं दिखता फिर उसको, दिखना चाहिए उसको, वही दिखता है जीसस क्राइस्ट आ रहा है और हाथ पकड़ के लेके जा रहा है वगैरह वगैरह। जितने भक्त आज तक द्वापर से हुए अब तक, जो कुछ भी उनको दिखा, मीरा को कृष्ण दिखा, कौन दिखा, कोई कृष्ण है जो उसको दिख रहा है, वो उसका ही प्रोजेक्शन है जो बाहर आ रहा है, प्रोजेक्शन। हाँ वो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत 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 रेयर, पर वो भी माया है, उसमें भी माया है। वो जितना दिखा दिखता है उससे कई गुना अधिक मिक्स उसको मिला मिला के वर्णन होता है, क्योंकि ये जो अनुभव इतने गहरे हैं कि इनका शब्दों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ही उनको शब्दों में लाए तो वहां माया चालू हो जाती है। फिर भी मैंने कहा ना, रेयर इवेंट है, होगा, बहुत रेयर, बहुत रेयर, और जिसको होगा वो शायद कभी वर्णन भी ना करे। हाँ, वो मैंने कहा ना, बहुत 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 ही रेयर इवेंट है, 1%, 99% जो भी हो रहा है वो प्रोजेक्शन है। जैसे कई विदेशियों को स्वप्न में ब्रह्मा बाबा दिख गए और फिर गए, जाते जाते दिखा रहे ये सेंटर, और ये रात में दिखे थे। अभी दिख रहा है किसी को ऐसा? बहुत कम, वो तब हो गया होगा जिसको हो गया। तो मैक्सिमम जो होता है वो प्रोजेक्शन है, बस माइंड का प्रोजेक्शन है। माइंड में जैसे दिन भर भूखा रहो तो रात में भोजन दिखता है स्वप्न में, उसी तरह जो 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 दमन किया हुआ है या जो जो बार बार सोचा गया है, जैसे किसी ने योग भट्टी की है 15 दिन 8 दिन मौन किया है और बाबा के ही कमरे में बैठे रहे और बहुत प्यार में आंसू बहा रहे हैं, तो यहां से जाने के बाद में उसे वो दिखेगा। जैसे कोई एक बहन आती थी, कहती थी कि ब्रह्मा बाबा यहाँ खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा वहां खड़े हैं, यहाँ दिखता है, वहां दिखता है, 18 जनवरी को तो दिखता ही दिखता है। तो ये व्हाट इज दिस, ये बाबा को क्या करना है? ये सब वो डिटैच्ड है इन सब चीजों से, वो ये सब कराने नहीं आया है। बाबा तो बस कर्म फिलोसॉफी बता दी है। अच्छा, ये दिखता होता तो जीवन में समस्या है? वो तो उससे तो वैसे की वैसी खड़ी है, वो तो समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या शक्ति आ गई ज्यादा उसको पार करने की, सामना करने की? उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करी तो तसफल चाखा। भगवान डिटैच्ड है इन सब चीजों से, ये खेल है, इन सब के में कहीं वो इंटरफियर नहीं करता है। जो जिसके साथ हो रहा है बाबा ने सीधा कहा हुआ है। मुरलियों में भले आता है, परंतु सूरज भाई ने 1970s में डायरेक्ट हिस्ट्री हॉल में बाबा से पूछा हुआ है 3 प्रश्न। उसमें से एक प्रश्न ये था कि बाबा, जो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराते हो वो आप कराते हो या स्वतः ही होता है? बाबा का उत्तर है डायरेक्ट हिस्ट्री हॉल में, बाबा ने कहा था, बच्चे वो साक्षात्कार बाप नहीं कराते, ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार होते हैं, अपने आप होते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है, साकार मुरलियों में बाबा ने यह भी कहा है कि मैं कराता हूं, परंतु उसने ये भी कहा है कि ये अपने आप होते हैं, और यही राइट उत्तर है वास्तव में। जो जिसकी जैसी भावना उसको वैसा वैसा दिखता है सामने। तो इनका प्रश्न फिर से पढ़ते, कुछ आत्माओं को अनुभव होता है, होगा, कई आत्माओं को होगा कि उन्हें बाप दादा सम्मुख दिखाई देते हैं, और वो दिखाई देते तो अच्छी बात है, देखो ना, देखने में प्रॉब्लम नहीं है, वर्णन करने में प्रॉब्लम है कि मुझे दिखे, उसका ये अर्थ है कि तुमको नहीं दिखे, तुम्हारी भावनाओं में इतनी अभी शुद्ध नहीं है। खोट तो नहीं, परंतु मेरी भावना थोड़ी अच्छी है, मेरी पुरुषार्थ अच्छा है, इसलिए तो मुझे बाबा दिखते है। ये भावनाओं के कारण लगता है या बाबा सच में ऐसा अनुभव कराते? अच्छा, भगवान ने कहा ये पढ़ाई है, क्या टीचर किसी को ज्यादा मार्क्स किसी को कम मार्क्स दे देंगे तो ये तो पक्षपात का आरोप लग जाएगा उसके ऊपर कि बाबा तुमने इसको साक्षात्कार कराया मुझे नहीं कराया, तुमने ऐसा कराया ये नहीं कराया, ऐसा अनुभव करते है। उस तक तो हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते है। हाँ, वो वाइब्रेशंस पहुंचते है, वो रिटर्न भी देता है, परंतु रिटर्न देने का अर्थ केवल साक्षात्कार तो बहुत ही छोटी चीज है, वो सामने दिख गया, ये क्या बहुत बड़ी प्राप्ति है? इसमें क्या प्राप्ति है? व्यक्ति साक्षात्कार भी कर सकता है और विकारों में भी जा सकता है, साथ साथ चल सकते हैं दोनों चीजें, उसका उससे क्या संबंध है? तो बाबा के पास तो शरीर नहीं है, यह सब सच कैसे हो सकता है? तो ये जो भी है सब प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस ऑफ द माइंड। इसके लिए ऐसा अगर होता है सीधा, जैसे वो फोन के मैसेजेस क्या करते हो उसके साथ, कितना वो एयरटेल का मैसेज आता है तो कितनी बार पढ़ते हो उसको, 10 बार कि 20 बार कि तुरंत डिलीट, जितना महत्व उनको दिया जाता है ये सब चीजों को भी। और दूसरा, जैसे साधना के मार्ग में सिद्धियां बाधा है, साधना के मार्ग में कोई भी साधना करने लगे, कैसी भी साधना करे, आध्यात्मिक साधना केवल, तो उसको अपने आप सिद्धि आने लगेगी, कोई ब्रह्मचर्य का व्रत 20 साल 10 साल कर ले, अपने आप सिद्धि आएगी। वो जो सोचेगा वो होगा, प्रकृति को आदेश देगा, प्रकृति उसकी बात मानेगी, बहुत सारी चीजें होगी। परंतु इसमें बहुत जबरदस्त माया है, जैसे ही वर्णन करने जाओगे फिर उसमें प्रसिद्धि आएगी कि ये इसमें कुछ है, दम कुछ तो है, हाथ लगा दो बस तो ठीक हो जाएगा। वो विवेकानंद के जीवन में दिखाते हैं, उनका एक बार बहुत अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद में उनका जो मित्र था राखाल, जो स्वामी ब्रह्मानंद बाद में, तो उसके घुटनों में बहुत दर्द होने लगा। तो उनको लगा नरेंद्रनाथ को कि इसके घुटनों का मैं अपने पावर से जरा प्रयोग करता हूँ, कुछ होता है क्या, और हाथ रखा और पूरी शक्ति उसको ट्रांसफर की वहां पर, और उसका घुटनों का दर्द ठीक हो गया। तो जब वो उनको पता चला, गुरु को, बोले ये शक्तियां मैंने तुम्हें घुटने का दर्द ठीक करने दिए या विश्व कल्याण करने दिए? ये बीमारी तो क्या, घुटने का आज दर्द हुआ कल फ्रैक्चर हो गया तो आगे क्या? एक बीमारी तो ठीक हो गई, दूसरी बीमारी नहीं आएगी उसकी गारंटी? ये सब चीजों के लिए नहीं है। ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो विश्व कल्याण के लिए, ये सब चीजों के लिए नहीं है। मेरा सर दर्द, हाँ वो दूसरा है, मन के प्रयोग करना, संकल्पों के प्रयोग अलग चीज है कि हम खुद करें, फिर कि हमारे सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हम प्रयोग करें कि हाँ मेरा ये ठीक हो रहा है, वो अलग चीज है, संकल्पों के प्रयोग, योग के प्रयोग। परंतु ये जो शक्ति का दिखावा है, प्रसिद्धि, इसमें तो थोड़ा सा, अगर देखो किसी को कुछ हो रहा है और हमने उसके लिए 10 दिन योग किया और उसका ठीक हो गया, फिर हमने जाके बताया देखो मैंने उसके लिए 10 दिन योग किया, वो बाधा चली गई, ठीक है उसी से गई होगी, पर इसमें अभी माया की प्रवेशता है। फिर दूसरे आएंगे हमारे लिए भी करो, और उसका नहीं हुआ तो इस मार्ग में भावुक नहीं होना है। यहां पर तार्किक मनुष्य में दो मन है, एक है कवि, एक होता है विचारक, एक होता है तार्किक बुद्धिमान बुद्धिजीवी, दूसरा होता है अति भावनाओं में मिस्टिक भक्त, ज्ञानी और भक्त, भावुक तार्किक, इस तरह से दो होता है। ज्यादा उसमें बह नहीं जाना है। ये सब अगर कुछ होता है ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, आगे बढ़ो, बाबा दिखे ना सुबह अमृत वेला, कुछ दिया, कुछ कर दिया, हाथ भी रख दिया कहीं, अच्छी बात है, अब उसका वर्णन नहीं करो। तो प्रोजेक्शन वो बहुत कम संभावना है उससे हो गया, हो जाए व्यक्ति को, मैंने कहा ना साक्षात्कार भी होते रहेंगे, और जिनको हुआ वो भी भाग के गए, जिनको नहीं हुआ वो भी गए, और जिनको हुआ वो भी गए, दोनों बातें। अगले दिन नहीं दिखा तो फिर उसी की वो क्यों नहीं दिखा, फिर उसकी आत्मग्लानी, शायद आज कुछ अशुद्धि आ गई, कल हमने ही दूसरों से कहा था कि तुमको नहीं दिखता है क्योंकि अशुद्धि है, और आज हमको ही नहीं हो रहा है, अभी कुछ दिन हुआ और फिर बाद में बंद हो गया, फिर क्या नेक्स्ट वर्ड, अब तो योगी नहीं लगता, और उसमें भी लालच है, आज ये दिखा तो कोई और दिखे, और वो दिखे, और वो दिखे, आज बाबा ने ऐसा कर दिया, अभी इच्छा होगी कि बाबा फिर सबके सामने करे ऐसा। मिस्टिक्स भावुक तो नहीं थे, परंतु वो जो कैटेगरी है वो उस तरह की कैटेगरी नहीं है, रहस्यवादी जिसको कहते हैं, रहस्यवादी होते हैं उनको, मिस्टिक्स और रहस्यवादी, वो उस तरह के तार्किक बुद्धि वाले नहीं होते, जैसे ये जो होते मैथमेटिशियंस होते, गणितज्ञ होते, लॉजिशियंस, तर्क तर्क, हर चीज तर्क 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 हर चीज में। पर भावुक जो होते ना भक्त, उनको ये सब चीजों से कोई नहीं है, जैसे राम का कोई भक्त है उसको कोई लेना देना नहीं है, राम का जन्म कब हुआ था, राम हुए थे कि नहीं हुए थे, बस उसकी भक्ति है राम में, फिर उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका वो जन्म यहां हुआ था या वहां हुआ था, उसको कोई लेना देना नहीं है ये सब चीजों से। तो वो एक, तो ऐसे दोनों पर चीजें एक ही व्यक्ति में रहते हैं, कभी ये प्रधान हो जाता है कभी वो प्रधान हो जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि बाबा ऐसा सब कुछ नहीं कराते, प्रोजेक्शन से सारे। नेक्स्ट, यदि किसी अशुद्ध या गंदगी पर दृष्टि जाती है और वह चित्र चित्त पर छप जाता है, और जब खाना या दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं तो वह अशुद्धि या गंदगी का चित्र सामने आ जाए तो मन खराब होता है, ऐसी परिस्थिति में बुद्धि को कैसे नियंत्रण करे जिसमें जिससे कोई सूक्ष्म पाप भी ना हो? इसमें विरोधाभास है। एक तो सूक्ष्म पाप की चिंता एक तरफ, पर दूसरी तरफ वो जो चित्र भी देख रहे हैं। जो भी दिखा है, चाहे अच्छा बुरा जो भी है, ये अच्छा बुरा कहना भी ये सब मन का ही खेल है। जो भी है, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको देख रहे हैं उस दृष्टि से, हमारा क्या दृष्टिकोण है। तो वो जो चित्र देखा, अब इनका ऐसा है, ये दमन है, यहाँ पर सप्रेशन हो रहा है। एक तरफ तो देख लिया, अब देख लेने के बाद फिर उसको उसकी स्मृति ना आए, वो चित्त पर ना छपे और उसकी याद ना आए, ये नहीं हो सकता है। वो आएगा, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी दिखा है, वो सब कुछ दिखेगा। माइंड उससे मुक्त नहीं हो सकता है। अब यहां जो करना है वो रूपांतरण करना है, दमन नहीं, क्योंकि ये जो मार्ग है दमन का है कि उसको अब नियंत्रण कैसे करें, यहां अब उसको कैसे, यहां नहीं रोका जा सकता है उसको, वो तो आएगा, जो देखा है वो आएगा। और यहां बात वो कह रहे हैं कि सूक्ष्म पाप भी ना हो। सबसे पहले तो दृष्टि को ही स्पिरिचुअलाइज कर देना है। दृष्टि जो देख रही है, अच्छा बुरा गंदा ये सब क्या है, पहली बात तो देह है। यहाँ जो गंदगी उन्होंने बोला है, जरूर देह की ही बात होगी, और तो कुछ है नहीं। और वह जो चित्र है वो छप जाता है, और फिर दूसरे दूसरे कार्य करते समय वो निकलता है। ये सोचना कि ये गंदा है और इसको हमने नहीं, इसको देख लिया, पहले तो आत्मग्लानी का भाव है यहाँ पर, और फिर वो न आए, ये भाव है, और फिर वो आ रहा है, और आने के बाद फिर उसको नियंत्रण करना है, यहां नियंत्रण नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो यहां ये समझना है कि हम क्या देख रहे हैं। जितनी प्रकार की पवित्रता गिनाई थी उस दिन, 21 प्रकार की, उसमें एक थी दृष्टि, एक था दृष्टिकोण। 21 प्रकार की, 21 टाइप की पवित्रता में ये दो पवित्रता है, दृष्टि की पवित्रता और दृष्टिकोण की पवित्रता। जो भी दिखाई दे रहा है, अगर दिख रहा है तो उसके वास्तविक स्वरूप को देखना है। देह उसमें ये जो है ना थिंकिंग, इसको केवल उतना छोड़ने देना है, उसको एक्सटेंड करना है थिंकिंग को, उस थिंकिंग को और लंबा खींचना है कि देह, देह में फिर है क्या, वहां नहीं छोड़ देना है, ये देह है, इसको बंद करो, तो वो जो है वो दमन होगा। उसमें है क्या, उसकी फिलॉसफी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी क्या है, देह की अंदर क्या भरा है उसके, वो समझना है। द्वापर से अब तक जितने ब्रह्मचारी हुए हैं आज तक, उन सब ने भागने का मार्ग चुना है, भागो, दूर भागो, दूर भागो, और फिर वो अंदर जो तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, वो सारी दब जाती है, मुक्त नहीं हो पाते उससे, उसका रूपांतरण नहीं करते। जैसे एक जैन साध्वी एक बार किसी होटल में, उसके भक्त उनको लेके गए, कुछ प्रोग्राम होगा, तो वो 5वीं मंजिल पे थी, तो उसने तुरंत फोन किया नीचे मैनेजर को कि सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, उसमें से एक पुरुष है जो मुझे देख रहा है, जल्दी आओ। तो वो मैनेजर भाग के आया, तो बोलती कहाँ है, तो बोलती कहाँ है, ये एक टेबल है उसके ऊपर खड़े रहो और ये दूरबीन लो, और वो दिखाती है, वो देखो उधर है बहुत दूर, वो मुझे देख रहा है, वो वहां से मुझे देख रहा है। दो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, एक साध्वी, एक दूसरा साधक, दिखाया उसकी शॉल, वो उसको लगती है, वो कहती है बिल्कुल मेरी शॉल तुमको लगनी नहीं चाहिए। ये सारे जो है ना दमन है, सारा दबा के रखा है। आगे ज्ञान में काम महाशत्रु है, आदि मध्यांत दुख देता है तुरंत, बिना उसको उस तरीके से समझकर केवल जहां दमन कर दो, तो वो अलग अलग समय में, अलग अलग व्यक्तियों के सामने, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अवसर पर बाहर आएगा, क्योंकि वहां दबा दिया है खाली। काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, काम कटारी है, सबसे बड़ा काटा है, विष है, जहर है, हिंसा है, भ्रष्टाचार है, सारे शब्द मूल्यों में आए हैं, ये सुने हैं। और व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है पहले का, कहां था वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वो लाइफ उधर की, और अचानक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। तो ये जो प्रश्न, ये जो है, ये तो बहुत गहरी चीजें हैं यहां पर जो उन्होंने कही है। सबसे पहला तो दृष्टि को, जो वास्तविकता है उसको समझना है क्या, कौन सी चाह है। क्योंकि यहां पर नियंत्रण यदि कर भी लिया तो फिर से वैसा ही होगा, फिर से खींचेगा देह। देह क्या है, इस देह को ही समझना है सबसे पहले। तो देह की वास्तविकता, देह के अंदर है क्या, जो हम देख रहे हैं वैसा है नहीं। वो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो इतने अच्छे दिखाई दे रहे, उन्हीं को बुढ़ापे के उनके चित्र देखो क्या है। बड़े बड़े एक्टर्स डायलिसिस हॉस्पिटल में, कोई देखने वाला नहीं। कितने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की डेथ्स कैसी हुई है, वास्तविकता देखो तो पता चलेगा बिल पे करने वाला कोई नहीं था। किस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा, कहां था वो सौंदर्य। तो जो हम देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है, किया जा रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है, समाज, उपन्यास, मीडिया, कवि, ये सारा सब कुछ। तो उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उसको समझना और उससे उसकी उसका अतिक्रमण करना है। मुक्ति भी बहुत छोटा शब्द है। बाबा तो कहते जीतना, परंतु जीत से भी दो व्यक्ति आ जाते हैं। ये महाशत्रु है, इसको जीतो तो युद्ध है। इसके दूसरी स्टेज है एक, उससे मुक्त होना है। जैसे क्रोध या काम है, काम से लड़ाई, तो लड़ाई तो जारी रहेगी दिन रात, वो नए नए रूप में आएगा। काम से लड़ाई जारी है। दूसरा है मुक्ति, मुक्त हो जाए, परंतु उसके ऊपर का भी एक शब्द है, अतिक्रमण कर जाना है उसका, उससे परे निकल जाना, ट्रांसेंडेंस, अतिक्रमण। उससे इतना परे निकल गए कि अभी नहीं तो, एक ब्रह्मचर्य जैसे एक साधु है, वो साधु कहता है कि मैंने सारे जीवन भर ये कहा है कि लोगों को समझाया है, सिनेमा में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नर्क का मार्ग है। सिनेमा जो है अपने प्रवचनों में कहा है कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी शक्ति है, काम महाशत्रु है, काम विकार है, ये सिनेमा में बिल्कुल नहीं जाना है। परंतु वो चुपचाप कहता है कि मैं इतना कहता हूं फिर भी लोग जाते हैं, कुछ तो होगा, मुझे भी तो कोई दिखा दे। छोटा सा था, 12 साल का, तब से सन्यासी बन गया, अब मुझे पता ही नहीं उसमें क्या है। अब जब से मैं आश्रम में गया तब से मुझे सिखाया गया और मैंने वैसा ही सीखा और वैसा ही प्रवचन किया, तो अभी एक बार तो जाऊं, एक बार तो मुझे कोई दिखा दे सिनेमा में होता क्या है, क्या हुआ है। ये ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा है, क्या कहेंगे इसको। ब्रह्मचर्य अर्थात अतिक्रमण, ब्रह्मचर्य अर्थात मुक्ति, ब्रह्मचर्य अर्थात सारा कमरे भर भी सारा कैसे भी दृश्य हो और कैसे भी चित्र लगा दी हो, व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित है। उसका ब्रह्मचर्य किसी स्थान या किन्हीं परिस्थितियों से केवल बाधित नहीं है। वो कहीं पर भी चला जाए तो भी कुछ भी आकर्षित ना करे, ये वास्तविक ब्रह्मचर्य है। नहीं तो धार्मिक सीरियल देख रहे, धार्मिक सीरियल में कुछ हो गया तो बस वो सारा सीरियल भूल जाता है, लोगों को उतना याद रहता है, और फिर उसका दमन, उसको दबाते हैं, फिर वो बार बार आता है, फिर वो योग में आता है, और फिर इस तरह से प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि ये देखा है, अब वो निकल रहा है, अब उसको नियंत्रण कर कैसे करे, ये प्रश्न ही गलत है सबसे पहले तो। क्योंकि विकार, बाबा ने कहा है क्रोध, क्रोध से मुक्ति जीतने से भी ज्यादा शब्द है मुक्ति, या उसका अतिक्रम ऊपर चले गए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करना कि जिसमें क्रोध संभव ही ना, क्रोध आए फिर क्यों आया, क्योंकि कितना उसको दबाओगे वो अपने आप आएगा कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से तो आना ही है उसको, दबा के जितना रखेंगे उतना तेजी से आएगा। भले 6 मास दबा के रखा तो 6 मास में एक बार आएगा, पर जो एक बार आएगा वो ऐसा भयंकर होगा कि उसका अगले 3 मास तो पश्चाताप में जाएगा, ये सोच सोच के कि 6 मास में तो कुछ भी नहीं था, सब अच्छा चल रहा था, तो ये अचानक कहां से आ गया। अचानक कहीं से कुछ भी नहीं आता है, वो तब भी था और मुक्त तभी होना होता है जब वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मन के बहुत गहरे तलों में वो छिपा है, बहुत गहरे तलों में है। उसका बीज बचपन में डाला गया है, उसका बीज कॉलेज में कहीं डाला गया है, उसका बीज कहां डाला गया है ये कभी कभी ढूंढना भी मुश्किल है, शायद इस जन्म में है ही नहीं, किसी और जन्म में है। तो सबसे पहली बात उत्तर है, देह को क्या है समझो, क्या है देह, क्या है इसमें इतना, मृत्यु को समझना, इससे मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है वैराग। वैराग की परिभाषा है 2 शब्दों में, देह मिट्टी संसार असार, इतनी वैराग की परिभाषा है। ये शरीर मिट्टी है, कैसा इसमें सुख, सरकारी अस्पताल में जाओ चक्कर लगाओ और देखो, जनरल वार्ड में मरीज, आदिवासी मरीज, सब जाके देखो तो फिर पता चलेगा, 14वीं का चांद या क्या आफताब या आफत, कौन सा चांद और कौन सा क्या, सामाजिक सम्मोहन क्रिएट किया गया है, यूनिवर्सल हिप्नोसिस मेस्मराइज किया है व्यक्ति को कि ये है ऐसा, और बचपन से वैसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में ही सारे परिवार वाले फिल्म देखने जाते हैं, साथ में ही बैठकर फिल्में देखते हैं, सामाजिक सम्मोहन है, जबकि वो है ही नहीं। अदलसा, साउथ में अदलसा नाम की एक संत हुई थी, वो अपने बेटे का उसका बहुत दिखाते हैं, शुद्ध सी पवित्र सी, छोटा सा बच्चा है रो रहा है पालने में है, वो अपने बच्चे को कैसे कर रही है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा कहकर कर उसको सुला रही है। ऐसी माया नहीं है आजकल संसार में, अभी ऐसी मां नहीं है कि जो उस एज में उसको आत्मा का ज्ञान दे रही है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध असी पवित्र असी दिव्य असी, वो उसको सुलाती है। ये उदाहरण दिया जाता है हमेशा मदलसा का। तो कुछ कर लिया देख लिया उसके बाद में फिर रोकना, सबसे पहले तो पीछे जाओ, और ये जो अशुद्धि है उन चित्रों में भी नहीं है, वास्तव में अशुद्धि इधर है, इधर ही है, खुजराओ कि मंदिरों में जाओ, या तो कौन से बाबा याद करते हैं जगह, वो जो मंदिरों के चित्र जो लगाए हैं, हाँ वो जैसे भी लगाए हैं वो, अब जिसका मन शुद्ध है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है वहां पर, परंतु जिसने दमन किया हुआ है वो देखते ही अग्नि प्रज्वलित होगी। दोष उनका नहीं है, वो तो है, जिसने निकाले वो निकाले, उसके पीछे भी बहुत बड़े शास्त्र है कि क्यों और क्या और कैसे, और वो भी आश्चर्य है कि मंदिर जहां व्यक्ति पूजा करने जाता है वो लोगों ने ऐसे चित्र क्यों बनाए बाहर, कुछ तो गहरे में है कुछ राज। तो देह को समझना है, देह के ये बहुत सारे लेवल्स पर ऑपरेट करता है। सबसे पहले एक स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो है ट्रिगर फिलिप उत्तेजक, वो भी अलग अलग प्रकार का। सबसे पहला तो विजुअल, आंख से कुछ देखा, कान से कुछ सुना, दूसरा, तीसरा हाथ से कुछ स्पर्श किया, चौथा कुछ ना कुछ इमेजिन किया फैंसी। ये 5 प्रकार के सेंसुअल स्टिमुलस है, पहला विजुअल आंख, दूसरा कान से कुछ सुना, तीसरा स्पर्श, और चौथा इमेजिनेशन। ये स्टिमुलस आए ब्रेन में, स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मेरुदंड और मस्तिष्क यहां गया, यहां पर कुछ स्टिमुलस हुआ और फिर बॉडी में हार्मोन्स है, सेक्सुअल हार्मोन्स, सेंसुअल हार्मोन्स, तो बहुत सारे मल्टीपल लेवल पर ऑपरेट हो रहा है हार्मोन्स, और हार्मोन्स के बाद में है इंद्रिय शरीर। स्टिमुलस आया ब्रेन में गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, सारी नर्व स्टिमुलेट हुई, हार्मोन्स रिलीज हुए और फिर उत्तेजना क्रिएट होगी शरीर में, देह के अंगों में, जननेंद्रियों में, और यहां के बाद फिर उसकी जो अभिव्यक्ति है वो काम है। यदि कहा गया कि ये देख लिया और ये सब हो गया, अब यहां कैसे रोके, वो दमन होगा, उसको रोकने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, शुरुआत कहां से हुई है, कहां से आया है, और वो जो है उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है। ये जो स्टिमुलस है इनको ही रूपांतरित कर देना तो फिर वहां तक हो जाएगा ही नहीं, वो तो केवल अभिव्यक्ति मात्र है वहां जो हो रहा है, उसका बीज बहुत पीछे है गहरे तलों में। तो गहरे वहां पर पहुंचकर, वहां जाकर पहले तो देह और देह के प्रति जो सूक्ष्म आकर्षण है अंदर ही अंदर, बहुत शायद हमने इसे बहुत सुंदर समझा है, बहुत अच्छा समझा है, बहुत नाजुक कोमल सुंदर जो भी कहो वो समझा है, ऐसा वो है नहीं। हॉस्पिटल में जाओ, जनरल वार्ड में टीबी के पेशेंट देखो तो पता चलेगा क्या कौन सा सौंदर्य है इसमें। हॉस्पिटल में जाओ, डायलिसिस के पेशेंट देखो तो पता चलेगा कौन सा सौंदर्य है इसमें। कैंसर के हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर कैंसर के पेशेंट देखो तो पता चलेगा कौन सा सौंदर्य है। फंगेटिंग मास पूरा जिसमें से स्मेल आ रही है, पेशेंट देखे हैं ऐसे, एक कमरे में रहते तो दूसरे दूर तक उसकी दुर्गंध होती है। तो वो जो दिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है या समाज में जो मान्यता है वो क्या है, फिर सब मिथ्या है। इस समझ को बढ़ाना अर्थात वैराग्य को लाना तो ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है, नहीं तो ये कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। और फिर वहां दबाव उससे, फिर लड़ाई करो, फिर ये आया, फिर अभी क्यों नहीं आया। और जब ब्राह्मण बनता है कोई व्यक्ति और जहां पर पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें ऐसा थोड़ी सी भी बात आती है, होगा इतना परंतु पश्चाताप इतना होगा। ये एक और एक दूसरी फिलॉसफी है, होगा इतना परंतु पश्चाताप उससे कई गुना अधिक होगा। और उस गलती कहो या उस जो संकल्प है या क्रिया है उससे पश्चाताप भी उसको ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि मन में आत्मग्लानी भर जाती है, फिर गिल्ट कॉन्शियसनेस कि ऐसा होना नहीं चाहिए पर हो गया, अब क्या करें, ऐसा होना नहीं चाहिए था पर हो गया। और जो दूसरा व्यक्ति है उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि सेवा के मार्ग में वो सहयोगी है। इतना ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, मैं 2016 जनवरी में ज्ञान में आई, बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो जैसा नशा था, दिन रात योग चलता रहता था, योग युक्त अवस्था हो गई थी, लेकिन क्या अब तो अमृत वेला मिस हो जाता है। योग के लिए भी बार बार स्वयं को याद दिलाना पड़ता है, तो दोबारा वो दिन, एनर्जेटिक दिन लौट आए उसके लिए क्या करे। फिर से 7 डेज का कोर्स अपने ही मन को कराओ। 7 डेज का कोर्स, एक होता है दूसरों को कराना, एक होता है खुद को कराना। 7 डेज का कोर्स, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने लिखा है कि ये जो मैं रघुनाथ की गाथा कर गा रहा हूँ, सुखा सिखा रहा हूँ, किसके लिए, दूसरों के लिए नहीं, स्वांत सुखाय, स्व के सुख के लिए, खुद के सुख के लिए, स्वयं को उस आत्मिक स्थिति में स्थित करने के लिए, स्वयं को उस अतीन्द्रिय सुख में ले जाने के लिए, स्वांत सुखाय। तो फिर से चालू करना, एक तो ये, दूसरा बाबा ने इसके उत्तर मुरलियों में बहुत बार दिए हुए। एक बार तो मुरली में प्रश्न ही था कि ऐसा क्यों होता है बाबा कि जब पहले आए थे तो बहुत नशा था, अब नशा गुम हो गया, कारण क्या बताया था, किसको याद है। अभी 5-6 महीने पहले मुरली अव्यक्तवाणी थी, एक 1981 की 15th क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें यह भी प्रश्न था चौथे नंबर पर कि ये बाबा की टचिंग है या आत्मा की खुद की टचिंग है, इसका अंतर कैसा है, ये चौथा प्रश्न था। और पांचवा प्रश्न ये था, क्या उत्तर था कि ज्ञान में जब आए थे तो बहुत नशा था और अब नहीं है, एक ही उत्तर बाबा ने बताया था। दूसरों को देखना, क्योंकि दूसरों को देखना चालू कर दिया है, ये उत्तर था उसमें। तो ये जो नशा था, पहली बात तो वो जो शुरू शुरू में जो नशा था और शुरू शुरू में योग रहता था, वो भी वास्तव में थोड़ा सा भ्रम ही है। वो भी जो लग रहा है ना कि पहले पहले बहुत योग लगता था और अब नहीं लग रहा, ये संकल्प ही बाधा है सबसे पहले। यही मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है कि पहले था और अब नहीं है, अब होगा भी ना तो भी वो उसका आकर्षण ज्यादा है। ये क्यों सोच रहे हो कि पहले वाला बहुत अच्छा था और अब अच्छा नहीं है, ये सोचना ही नहीं है, यही ब्लॉक है। क्योंकि व्यक्ति हर समय आगे बढ़ रहा है, अभी जो अनुभव आ गए हैं बीच में बहुत कड़वे, ज्ञानियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, परिवार ने बहुत धक्के दिए, सब कुछ किया, हिसाब चुकतू हुए, तो ये अनुभव से तो आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली बनी है। तो वो कैसा कहा जा सकता है कि वो ही बहुत अच्छा था और अब अच्छा नहीं है? ये एक ऐसा ब्लॉकेज है जबरदस्त कि इस संकल्प की वजह से आगे अब पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। पहले तो ये संकल्प से ही मुक्त होना है। प्रश्न गलत है कि सबसे पहला तो ये सोचना कि जब हम आए थे तब बहुत योग लगता था और तब सब अच्छा होता था और सब, ये ऐसा कुछ नहीं है। तब हमको योग की गहराई का ही पता नहीं था। जब जो हो रहा था उसको हम योग कह रहे थे। वास्तविक योग इतना जल्दी थोड़ी सीखा जाता है। वास्तविक योगी बनने के लिए तो समय लगता है। ये बहुत सारी केवल सिखाते रहो 10 साल, योगी अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब में जो समान है वो योगी है, इस पर बहुत प्रवचन किए और कभी अपमान हुआ ही नहीं, कभी निंदा हुई नहीं, कभी हार का अनुभव ही नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको, योगी कहेंगे? ये सब हुआ अभी और फिर हम ये कह रहे कि पहले तो बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, योग लगता था, अभी नहीं हो रहा है। अरे अभी नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, अभी तो और ज्यादा संभावना है अच्छा होने की, अभी तो और परिपक्व हो गए हो, अभी जैसे कहा फिर से दोबारा सब चालू करो। जैसे वो एक विदेश की ऑथर ने उसका नाम भूल गया मैं, उसने उसमें लिखा है कि वो 70 साल की होती है और उसने किताब लिखी और वो एक दोस्ती करती है छोटे से बच्चे के साथ 5 साल के, और उसका ये लक्ष्य होता है कि जैसा छोटा बच्चा जो कुछ करता है वो मैं करूं, जैसा वो देखता है वैसे मैं देखूं, क्योंकि मुझे वापस से इस जीवन की नई शुरुआत करनी है। तो तीन कुछ वो 1 साल तक उस बच्चे के साथ रही, वो बच्चा अगर वो सीप बीनता है या मोती उठाता है या कुछ करता है तो वो भी वैसा वैसा करने लगी उसके साथ। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जब वो उसकी उम्र थी 60-70 साल की तब उसने किया, ये देखने के लिए कि इस दुनिया को मुझे उसी दृष्टिकोण से देखना है जैसे बच्चा देखता है, एकदम सब कुछ नया, जैसे बच्चे के लिए सूरज उग रहा एकदम नई बात है, हमारे लिए बहुत साधारण सी है, नदियां बह रही है, आवाज आ रहा है, वो हर चीज को आश्चर्य से देखता है। तो हर चीज में नई दृष्टिकोण, री इंजीनियरिंग, ठीक है ना? तो एनर्जेटिक होने के लिए सबसे पहले तो ऐसा ये संकल्प हटा दो कि पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है। दूसरा, फिर से नया शुरुआत करो, अभी सब कुछ, ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान को समझने की कोशिश करो, वो कौन से कारण है, हमने किसी को देखना तो नहीं चालू कर दिया, किसी के अवगुण तो नहीं दिखाई दे रहे, कि इस कारण से कारण ढूंढो क्यों हुआ। अगर ऐसा लगता भी है कि पहले अच्छा था तो तब कौन से कारण थे और अब बीच में ऐसे कौन से कारण आ गए। हो सकता है अभी ये तो कह रहे हैं कि अमृत वेला ही नहीं हो रहा है, अमृत वेला क्यों नहीं हो रहा है उसका रिसर्च करो, अगर हो भी रहा है तो शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहा है उसको रिसर्च करो, अगर उठ रहे हैं परंतु नींद आती है क्या करे। जो योगी है और जो ज्ञानी है उनका संग करो, अमृत वेले की किताब है वो फिर से अध्ययन करना चालू करो, पढ़ाई छूट गई है, मेन तो हम कहेंगे पढ़ाई, मुरली सुनना और सुनाना इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है, मुरली क्लास में गए बैठे मुरली सुनी आ गए, ये पढ़ाई नहीं है, या मुरली संतली पर बैठे और मुरली सुना दी, इसको थोड़ी ना पढ़ाई कहते। पढ़ाई अर्थात चिंतन, पढ़ाई अर्थात मनन, पढ़ाई अर्थात उसकी गहराई में जाना, एक एक शब्द के एक एक वाक्य के इतनी गहराई में जाना कि वो पूरा समझ में आ जाए क्या है, ये पढ़ाई है। ये कर रहे, अगर ये नहीं कर रहे तो ये ऐसा होगा, जहां चिंतन कम हो गया वहां नींद आएगी। जागरण की अवस्था चाहिए, जागरण। जैसे सबसे ज्यादा जागरण व्यक्ति को तब होता है यदि घर में है और घर में आग लग गई। एक व्यक्ति है जो ऐसे योग कर रहा है, ठीक है, योग में उसको नींद आ रही है और अचानक घर में आग लग जाती है, फिर नींद आती है, क्या बताओ। वो क्या हो जाता है, वो आग ने क्या कर दिया, जागरण ला दिया। क्या ऐसा जागरण निरंतर हो सकता है? वैसे निरंतर जागरण की अवस्था अर्थात योग, कि निरंतर हम जागरण में है, निरंतर हम उस स्थिति में है, उसके लिए कितना जबरदस्त ज्ञान की अग्नि जलनी चाहिए। दिनचर्या में वो, मतलब कहने का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान का जो सार है वो है अवेकनिंग, जागरण। उसका संबंध क्या कोर्स कराना, ये कराना, सेवा करना, इधर जाना उधर जाना, ये सब सेकेंडरी है, डिटेल्स। मुख्य है जागरण, आत्मा किस अवस्था में रहती है। क्योंकि जैसे ही बेहोश हुई चोट लगी, बेहोश हुई किसी ने हर्ट किया, बेहोश हुई दुख हुआ, बेहोश हुई कि सब दिनचर्या डावाडोल इधर उधर हो गई, सारी अस्त व्यस्त। तो स्वयं को जगाना है। कल बाबा ने कहा ना, बाप आए हैं फिर भी लोग सोए हुए हैं। बाप आते हैं जगाने के लिए, परंतु बाप आए हैं उसके बाद भी सोए हुए। सोए हुए कौन है? हम। वो उदाहरण बताते हैं ना, आशा बहन ने एक बार, सारी ब्रह्मा कुमारी बहने थी, उनको एक चित्र दिखाया था, तो हाँ कुंभकर्ण का क्या है इसमें बताओ। तो बहनों ने कहा इसमें क्या है, ये तो हम रोज ही समझाते हैं, कुंभकर्ण है, ब्रह्मा कुमारी ऊपर से अमृत डाल रही है, इधर से निकल रहा है, वो लोग सोए हुए। उन्होंने कहा ठीक से देखो, उस कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है। वो कुंभकर्ण कौन है? ब्राह्मण ही सोए है, वो हम ही है जो सो रहे। दुनिया वाले तो अज्ञान की नींद में सो रहे, हम विस्मृति की नींद में सो रहे हैं। अगला प्रश्न, तो वापस जगाना है स्वयं को, उतना ही जागरण जितना आग लगने के बाद जागरण आता है व्यक्ति को। हमने भी देखा है कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी योग कर रहे हैं और हल्की सी नींद, हल्का सा असर है, और अचानक आईसीयू से कॉल आ गया और आईसीयू में गए और नींद उड़ गई। ऐसा लग रहा था 2-3 घंटे नींद हुई है, थोड़ी नींद कर ले, और थोड़ी सी नींद आ रही थी, और जैसे आईसीयू में गए और वो वहां पर असंभव है अब नींद करना, वहां पर एकदम कोई सीरियस पेशेंट है, ये है वो है, कहां से नींद। उसी तरह आग लग गई घर में, तो कोई आराम से ऐसा कह सकता है मुझे नींद आ रही है मैं नहीं करूंगा? जिम्मेदारी पर उसका ही स्मरण, उसकी स्मृति, उसका एहसास वो बहुत कम है। अगर वो रहे, इसी का इसलिए कहा ज्ञान की कमी है। ज्ञान को बढ़ाना, जागरण को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ाना, तुम्हें सबको सुजाग करना है। कल की साकार मुरली सबसे पावरफुल वाक्य है, तुम्हें सबको सुजाग करना है। छोटा सा वाक्य है पर क्या हमने उसको पकड़ा और हुए सुजाग, या रूहानी बेहोशी में है। लास्ट प्रश्न, 16-8-17 की मुरली में क्राइस्ट के जन्म के बारे में शिव बाबा ने जो कहा कि वे छोटेपन में क्रिश्चियन धर्म स्थापन नहीं करते परंतु बड़े तन में अवतरण करके धर्म स्थापन करते, इस तरह से गुरु नानक का भी बताया है, कृपया इसके बारे में डिटेल समझाए। ये तो बाबा ने बता दिया, हर जितनी धर्म स्थापक आत्मा है उनमें एक दूसरी आत्मा प्रवेश करती है। वो महात्मा बुद्ध का जब तक वो बोधि वृक्ष के नीचे नहीं बैठे है तब तक जो कुछ है वो गौतम का पाठ है, जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनको एकदम जो एनलाइटनमेंट हुआ, संबोधि प्राप्त हुई, वहां पर एक नई आत्मा ने प्रवेश कर लिया और वहां से फिर दो आत्मा एक शरीर में चलने लगी। जब तक वो जीवंत थे तब तक, और जब मृत्यु हुई तो एक आत्मा इधर गई, एक आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। अच्छा, फिर वो एक प्रश्न है कि वो कौन सी आत्मा होगी जिसके तन में जीसस क्राइस्ट, कौन सी आत्मा होगी? ब्राह्मण धर्म की होगी, क्योंकि उस समय दूसरी कौन सी आत्माएं थी नहीं संसार में, तो जरूर वही देवी देवता धर्म की आत्माएं नीचे थी, और उसी तन में फिर क्राइस्ट ने प्रवेश किया। हाँ, क्राइस्ट की आत्मा अलग है, वो धर्मस्था करे, परंतु जीजस की जो आत्मा है वो ब्राह्मण हो सकती है। वो अपने उसने क्योंकि विकारों में थोड़ा जाने के बाद में उसको दुख हुआ और वो निकल के आगे दूसरा शरीर ले ली, परंतु क्राइस्ट की आत्मा संपूर्ण पवित्र है। वो आई, उसने धर्म स्थापन किया, वो भी निकलकर आगे गई और वो भी अगला जन्म शायद पोप बन के आगे, जो बाबा ने कहा था ना पोप, क्या उसका बाप भी आएगा। जब मुंबई में पोप आया था 1963-4 में, कब पोप 4 या पोप 3, तो उसके लिए कहा था ना बाबा ने कि उसका बाप अर्थात जीजस क्राइस्ट वो भी आएगा, वो लास्ट में आएगा। तो वैसे ही बुद्ध मोहम्मद जो कहते हैं वो जिब्राइल आया और उसको सारा कुरान इनायत जो कुछ हुआ, तो वो उस समय एक नई आत्मा उसमें प्रवेश की, धर्म स्थापन किया और चली गई। इब्राहिम नई आत्मा आई, धर्म स्थापन किया, चली गई, बाकी इस आत्मा ने अपना जन्म लेते रही। उसी तरह महावीर, वर्धमान महावीर, नई आत्मा ने प्रवेश किया, धर्म स्थापन किया, जैन, और वो चली गई। उसी तरह बहुत सारे जो भी है, ज़ोरास्तुस्ता, वो जिसको कहते हैं ज़ोरास्ट्रियन धर्म की आत्मा, पारसी धर्म, जितने भी धर्म है और जितने भी धर्म स्थापक है, वो तो पहले साधारण व्यक्ति है, उस साधारण व्यक्ति में एक नई आत्मा प्रवेश करती है, धर्म स्थापना का कार्य करती है और निकल जाती है। ये तो बाबा ने उत्तर कई बार दिए है। तैयार है? और एक लास्ट बात, अभी ये जितने प्रश्न पूछे है, चार लोगों ने जो प्रश्न पूछे, सबसे पहले तो जो भी हमारे मन में प्रश्न है उनका उत्तर हमारे ही मन में है। हमारे प्रश्नों का उत्तर वास्तव में कोई दूसरा कैसे दे सकता है, क्योंकि जीवन हमारा है। उस जीवन में जो भी प्रश्न है उनके भी उत्तर हमारे ही मन में है, खाली हमको खोजना है उनको, क्योंकि मन जो है शांत नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे उत्तर। माइंड को शांत कर दो, स्थिर कर दो, स्टेबल कर दो, तो सब कुछ वैसे ही दिखाई देने लगेगा जैसा वो है। किसी मधुबन निवासी, किसी सेंटर इंचार्ज, किसी जोन इंचार्ज, किसी भी व्यक्ति के पास उत्तर नहीं है, उत्तर हमारे पास ही है। हाँ, वो थोड़े सहायक हो सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। उत्तर जो है वो मिलेगा अंदर से ही, सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग। उसके लिए हरेक को थोड़ा एकांत में जाना पड़ेगा, हरेक को थोड़ा सा मौन में जाना पड़ेगा, हरेक को थोड़ा सा सेवाओं के विस्तार में रहते हुए भी, उस जंगल में न खोते हुए भी स्वयं को स्थिर करना पड़ेगा। उसी परिस्थिति में एकांत को भी वहीं ढूंढना पड़ेगा। कई सब कहते हैं ना, हमारे आसपास तो हमेशा कोई ना कोई रहता ही है, परंतु एकांत का संबंध दूसरे व्यक्तियों से नहीं है, स्थान से नहीं है, एकांत का संबंध स्थिति से है। जैसे हम रास्ते पर, सड़क पर जा रहे, हजारों लोग हैं रेलवे स्टेशन पर, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, इसके लिए हमको वहां पर एकांत में रह सकते हैं। परंतु जब हम अपने चाहे सेवा केंद्र या अपना स्थान, वहां पर जो आत्मा है उनसे ही हम अटैच्ड है, इतने ज्यादा अटैचमेंट है उनसे कि हमको एकांत तो होने ही नहीं देता है। वो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उनसे ही हमारा सूक्ष्म आकर्षण है, अटैचमेंट है। और उनसे जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं उनसे सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, जिनसे घृणा है उनसे भी अटैचमेंट है, जिनसे डिसलाइक है उनसे भी अटैचमेंट है। इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें आज बैठी हुई है, एक लास्ट बात कहेंगे कि खलील गिब्रान ने किताब लिखी है द प्रॉफिट, उसमें एक मुख्य पात्र है उसका अल मुस्तफा। अल मुस्तफा ने एक जगह कहा है कि दो व्यक्ति जब एक साथ रहते तो ऐसे रहे जैसे मंदिर के खंभे, साथ में रहे परंतु डिटैच्ड, क्योंकि दो खंभे यदि आसपास आ गए तो मंदिर गिर जाएगा। दो व्यक्ति जो साथ रह रहे, दो बहनें, दो भाई या जो भी एक साथ रहने वाले जो भी है, वो रहे साथ में, ये उनके लिए कह रहा है जो प्रेमी है। वो जो लिख रहा है अल मुस्तफा, जो प्रेम करते हैं स्त्री और पुरुष के लिए लिख रहा है वो, कि दो ऐसे रहे जैसे मंदिर के खंभे, समीप आ गए तो मंदिर गिरेगा। इसके लिए साथ में रहते हुए भी डिटैचमेंट, साथ में रहते हुए भी अलग, साथ में रहते हुए भी एकांत, साथ में रहते हुए भी वो नहीं होना चाहिए, या तो अटैचमेंट होता है या तो डिटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण विकर्षण, या तो बहुत प्यार किसी से या तो घृणा, न्यूट्रल, घृणा भी नहीं, जिससे ज्यादा प्यार, उसने अगर दुख दिया तो तुरंत उससे घृणा हो जाती है और चार दिन बात बंद करना बंद। ये भी कोई मार्ग नहीं है, ये सच्चा वैराग नहीं है, सूडो वैराग है, झूठा वैराग। किसी से बहुत प्यार है और एक दिन उसने हर्ट कर दिया तो चार दिन बात करना बंद, और हमको लगता है अभी कितना अच्छा लग रहा है उससे दूर रहता, पर ये झूठा वैराग है, तुरंत इसमें मोह में आ जाएगा क्योंकि आदत मोह की है, तुरंत खींच के उधर वापस आ जाएंगे। पेंडुलम खाली लेफ्ट साइड गया है, जाते समय लगा कि बहुत अच्छा हो गया हम राइट से दूर हो गए, परंतु वो जो लेफ्ट जा रहा है एनर्जी जमा कर रहा है उधर जाने की, और तेजी से उधर जाएगा। चिंतन भी होगा, एक व्यक्ति से बहुत प्यार है, उसने कुछ कर दिया, घृणा हो गई, अब घृणा होने के बाद में फिर से प्यार खींचेगा कुछ दिनों के बाद, इधर गया इधर, इसलिए ना इधर ना उधर, बीच में मंदिर के जो पिलर्स है दूर रहते हैं। इसके लिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव, बहन हो भाई हो कोई भी हो, जहां होगा वहां दुख आएगा, इसके लिए डिटैच्ड। वही तो उत्तर दिया प्रश्न के लिए ही। हो पर खुद ही ढूंढो, इससे पहले कि दूसरे से पूछे, पहले खुद लिखो अमृत वेला, उसका उत्तर आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर पूछो किसी से। ओम शांति।